मगध का उत्कर्ष। लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार में लोहे का प्रचुर प्रयोग होने के कारण अधिशेष उत्पादित होने लगा। लोहे का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया और उसके प्रयोग की वजह से अधिशेष यानी कि लाभ मिलने लगा काफी, और वो संचित होने लगा लाभ, जिसके कारण उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे, और बाद में चल के मगध सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया, और इसी का अब हम अध्ययन करेंगे। तो अगर मगध का इन 16 जनपदों में उत्कर्ष हुआ, सबसे अधिक शक्तिशाली वो हुआ, तो कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों हुआ। तो चलिए जानते हैं वो कारण क्या थे। तो सबसे पहले आता है विस्तृत उपजाऊ मैदान और प्राकृतिक सुरक्षा। बिहार के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जो गंगा यमुना का दोआब है, जहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है, वो क्षेत्र इनका पड़ता था, और चारों तरफ से सुरक्षा, इधर नदी और उधर पहाड़, इसकी वजह से। और दूसरा, खनिज संसाधनों की प्राप्ति। खनिज संसाधन बहुत अधिक यहाँ से निकलने लगे जमीन से, और विशेषकर लोहा, जिससे हथियार बनने लगे, जिससे और साजो सामान बनने लगे। और नदी मार्ग व्यापार एवं स्थलीय व्यापार, इसको भी काफी उन्नति मिली। और वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता, हाथी काफी मात्रा में उपलब्ध थे और काफी वन क्षेत्र भी था। सामाजिक खुलापन और प्रगतिशील दृष्टिकोण, नवीन धर्मों का उदय, कृषि में लोहे का प्रयोग। अब जब कृषि में लोहे का उपयोग हुआ तो कृषि का अधिशेष भी बढ़ा, और धान की रुपाई पद्धति का विकास। धान होता है चावल, उसकी रुपाई पद्धति का विकास हुआ इसी काल में और इसी स्थान पे खास तौर पे। कृषि में दासों एवं कर्मकारों को लगाया जाना, कृषि में दास और कर्मकार भी लगाए, पहले लोग स्वयं करते थे, फिर दास और कर्मकार को लगाने लगे। इन उपरोक्त कारणों से कृषि अधिशेष की स्थिति आ गई, तथा कृषि अधिशेष से मतलब है कि खाने के बाद बच जाने वाला अनाज, जब वो कृषि अधिशेष इनको प्राप्त हुआ तो वो आसपास के राज्यों में आवंटित हुआ, जिससे इनको धन की प्राप्ति हुई, और मगध जो था एक रिच यानी धनवान स्टेट हो गया, राज्य हो गया, जनपद हो गया, और इसी वजह से मुद्रा अर्थव्यवस्था का इस जगह विकास हुआ। अतः छठी सदी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। प्रथम नगरीकरण हम मानते हैं हड़प्पा सभ्यता में, ये द्वितीय नगरीकरण था, जिससे राज्य निर्माण प्रक्रिया को बल मिला। राज्य को ठोस आर्थिक एवं सामाजिक आधार प्राप्त हुआ, और करारोपण प्रणाली यानी टैक्सेशन, टैक्स लगने लगा लोगों के, भाई व्यापार जो कोई करेगा उसको टैक्स देना होगा, क्योंकि राज्य मजबूत हो रहा था। राजा को राज्य चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि राजा की जो इनकम होती थी वो तो टैक्स ही है। स्थायी सेना रखी जाने लगी, और उसमें जो था पृथक नौकरशाही, यानी क्योंकि अधिक सेना की आवश्यकता पड़ी तो अलग से लोग हायर करने पड़े। लोहे की उपलब्धता से युद्ध उपकरणों का व्यापक निर्माण संभव हुआ, क्योंकि इसी एरिया में लोहा बहुत ज्यादा निकल रहा था, तो सबसे ज्यादा हथियार भी इन्हीं के पास थे। राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा बढ़ी, तथा राजत्व की सुस्पष्ट अवधारणा का विकास हुआ। मगध के योग्य शासकों एवं मंत्रियों के नेतृत्व ने उद्भव की प्रक्रिया को आसान बना दिया, और मगध पर क्रमशः वृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने शासन किया। चलिए सबसे पहले देखते हैं वृहदत्त वंश। वृहदत्त वंश का संस्थापक वृहदत्त था। वृहदत्त एक प्रतापी राजा एवं महाभारत कालीन वासुदेव श्री कृष्ण का शत्रु था। वृहदत्त का पुत्र जरासंध बड़ा ही प्रतापी राजा था। जरासंध की राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह थी। महाकाव्य महाभारत के अनुसार जरासंध उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, परंतु वह पांडव राजकुमार भीम द्वारा मल्लयुद्ध में मारा गया। इस वंश का अंतिम शासक निपुंजन था, जिसकी हत्या करवाकर उसके मंत्री पुलिक ने अपने पुत्र को मगध के सिंहासन पर बिठा दिया। इसके बाद आता है हर्यक वंश। अब जो एक भट्टिया नामक वीर और महत्वाकांक्षी सामंत ने, सामंत होते थे मंत्री की तरह, पुलिक के पुत्र का वध कराकर बिम्बिसार नामक अपने पुत्र को मगध के सिंहासन पर बिठा दिया। 15 वर्ष की आयु में 543 ईसा पूर्व बिम्बिसार मगध की गद्दी पर बैठा। उसे श्रेणिक भी पुकारा जाता था। बिम्बिसार 6 शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश के शासन का संस्थापक माना जाता है। बिम्बिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। गिरिव्रज में 5 पहाड़ियों से घिरे स्थान राजगृह को दुर्गों का निर्माण कर सुरक्षित किया और उसे ही नई राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने कौशल, लिच्छवी, विदेह एवं क्षेममद्र आदि राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर मगध की सीमा को सुरक्षित किया। बिम्बिसार ने वो सारे कार्य किए जिससे कि उसकी स्थिति वहां सुदृढ़ बन जाए। मगध का वास्तविक वैसे संस्थापक यदि देखा जाए तो बिम्बिसारी को ही माना जाएगा, प्रथम जो सशक्त रूप से स्थापित किया, आसपास के सारे राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपनी राजधानी को एक ऐसी जगह स्थापित किया जहां पे हमला करना संभव ही नहीं था, घिरा हुआ था चारों तरफ से। वो आसपास के कई राज्य फिर धीरे धीरे करके मिलाते रहे, देखते हैं कौन कौन से। बिम्बिसार ने अंग महाजनपद पर आक्रमण करके उसे मगध राज्य में मिला लिया। बिम्बिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का गवर्नर यानी प्रांतिपति नियुक्त किया। स्थापित मान्यताओं के अनुसार बिम्बिसार बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध धर्म को मानता था। बिम्बिसार के दरबार में जीवक नामक राज्य वैद्य था, जिसे उसने महात्मा बुद्ध की चिकित्सा के लिए भेजा था। जो जीवक वैद्य था, पहले हम बौद्ध धर्म में भी जान चुके हैं इसके बारे में कि ये जो है पहले बिम्बिसार के दरबार में था और उसके बाद गौतम बुद्ध की सेवा में गया और गौतम फिर ये बौद्ध संघ का भी राज्य वैद्य हो गया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार 493 ईसा पूर्व में बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, परंतु जैन साहित्य इस बात को नहीं मानते। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु बिम्बिसार एवं उसकी लिच्छवी रानी चिलन्ना का पुत्र था। 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के पश्चात अजातशत्रु ने प्रथम युद्ध कौशल के साथ किया, जिसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत को हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। इस कार्य में उसके मंत्रियों वरसकार और सुनीर ने उसकी मदद की। अजातशत्रु ने गंगा के किनारे सामरिक उद्देश्य से एक दुर्ग का निर्माण किया। उसने युद्धों में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया। लिच्छवियों का नाश करने के पश्चात उसके पश्चिम में स्थित मल्ल संघ को भी अजातशत्रु ने परास्त कर अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार उत्तर हिमालय तक कर दिया। उपलब्ध प्रमाणों से ये प्रतीत होता है कि अजातशत्रु आरंभ में जैन धर्मावलंबी था, यानी पहले जैन धर्म मानता था और बाद में बौद्ध धर्म मानने लगा। बौद्ध साहित्य अजातशत्रु को पितृहत्या कहते हैं, यानी उसने अपने पिता की हत्या की, तथा अपनी पिता की हत्या के कुकृत्यों के लिए महात्मा बुद्ध से माफी मांगी। पुराणों में अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दशक को बताया जाता है, जिसने 25 वर्षों तक शासन किया। कथाकोश एवं पारिष्टि पर्वन के अनुसार अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने एक षडयंत्र रच के अपने पिता की हत्या 461 ईस्वी में कर दी। यानी सबसे पहले बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने, उसने भी अपने पिता को मारा और इसने फिर अपने पिता को मार दिया। 461 ईसा पूर्व में उदयन गद्दी पर बैठा एवं पाटलिपुत्र नगर का निर्माण कराया, पाटलिपुत्र जो अब पटना कहा जाता है। उदयन के शासनकाल में पहली बार पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी।